अध्याय 44 यर्दन को पार करना। यह अध्याय यहोशू 1-5 आयत 12 पर आधारित है। इसराइली ने अपने दिवंगत अगुए का शोक मनाया और उसकी स्मृति के उपलक्ष्य में 30 दिन विशेष धर्म क्रिया को समर्पित किए गए। मूसा को उनसे अलग कर दिए जाने से पूर्व कभी भी उन्होंने उसके ज्ञानपूर्ण सुझावों, उसकी पिता समान नम्रता और उसके दृढ़ विश्वास के मूल को नहीं जाना था। एक अलग और अति आभार के साथ उन्होंने उस बहुमूल्य शिक्षा का स्मरण किया जो उसने उनके साथ रहते हुए दी थी। मूसा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव उसके साथ समाप्त नहीं हुआ। प्रभाव को लोगों के हृदयों में पुनजीवित होकर जीवित रहना था। उसके जीते जी कहे शब्दों की उपेक्षा करने वालों के जीवन को ढालने वाली शांत शक्ति के साथ उस पवित्र निस्वार्थ जीवन की स्मृति को दीर्घकाल तक संजोया जाना था। जैसे कि पहाड़ों के पीछे से सूर्यास्त के बाद भी डूबते सूर्य का प्रकाश पर्वत के शिखरों को उज्ज्वल करता है, वैसे ही कर्ताओं के मरणोपरांत उन पवित्र, धर्मी और भले मनुष्यों के कर्म दीर्घकाल तक संसार पर प्रकाश डालते हैं। उनके कर्म, उनके कथन, उनके उदाहरण सदा जीवित रहेंगे। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। भजन संहिता 112 आयत 6। यद्यपि इस गहरी क्षति से वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा गया था। बादल का स्तंभ दिन में मिलाप वाले तंबू पर ठहरा रहता था और रात में आग के स्तंभ के रूप में ये एक आश्वासन था कि यदि वे परमेश्वर की आज्ञानुसार चलेंगे तो वह अभी भी उनका सहायक और मार्गदर्शक होगा। यहोशू अब इसराइल का अभिस्वीकृत अगुआ था। उसे मुख्यतः योद्धा होने की मान्यता प्राप्त थी और उसके लोगों के इतिहास के इस चरण में उसके गुण और योग्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। साहसी, दृढ़, निरंतर प्रयत्नशील, तत्पर, सच्चरित्र, उसके प्रभार के सुपुर्द किए हुओं की देखरेख से अपने स्वार्थपूर्ण लाभ के प्रति अनजान और इन सबसे बढ़कर परमेश्वर में सक्रिय विश्वास से प्रेरित प्रतिज्ञा के देश कनान में प्रवेश करने पर इसराइलियों की सेनाओं का संचालन करने वाले परमेश्वर द्वारा नियुक्त मनुष्य का चरित्र ऐसा था। बीहड़ में पड़ाव के दौरान उसने मूसा के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया था और अपनी शांत और आडंबर रहित स्वामी भक्ति से, दूसरों के लड़खड़ाने पर भी दृढ़ रहने से, संकट काल में भी सत्य को कायम रखने से, उसने परमेश्वर द्वारा इस पद के लिए बुलाए जाने से पहले ही मूसा का उत्तराधिकारी होने की योग्यता का प्रमाण दिया था। बहुत उत्सुकता और आत्मअविश्वास के साथ यहोशू ने उसके सम्मुख रखे गए कार्य की अपेक्षा की थी, किंतु परमेश्वर के आश्वासन ने उसकी झिझक को दूर किया। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। जो मैंने मूसा से कहा, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूं। सुदूर लेबनान की पहाड़ियों से लेकर परात महानद तक और महासमुद्र के तट तक सारा देश उनका होना था। इस प्रतिज्ञा के साथ आज्ञा दी गई, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसका पालन निश्चय के साथ करना। यहोवा का निर्देश था, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। तुम उस पुस्तक का अध्ययन दिन रात करो और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसराइली अभी भी यर्दन के पूरब में पड़ाव डाले हुए थे, जो उनके द्वारा कनान के अधिग्रहण में पहली बाधा थी। यहोशू को परमेश्वर का पहला संदेश था, अब तू उठ और इसी सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको देता हूं। जिस प्रकार से उन्हें वहां से मार्ग निकालना था इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया था। फिर भी यहोशू जानता था कि जो भी आदेश परमेश्वर देगा उसका लोगों से पालन करवाने का मार्ग वह अवश्य निकालेगा, और इसी विश्वास में बहादुर अगुवे ने तुरंत कूच करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। यर्दन नदी के पार कुछ ही मीलों की दूरी पर इसराइलियों के पड़ाव के सम्मुख स्थित यरीहो का विशाल सशक्त किलाबंद शहर था। यथार्थ में यह शहर पूरे राष्ट्र के लिए चाबी समान था और वो इसराइल की सफलता के मार्ग में सबसे दुर्जय बाधा प्रस्तुत करता। इस कारण यहोशू ने दो नौजवान गुप्तचरों को निरीक्षण करने और उसकी जनसंख्या, संसाधनों और उसके किलेबंदी की ताकत के संदर्भ में कुछ सुनिश्चित करने भेजा। उस नगर के वासी भयभीत और संदेहजनक लगातार सावधान रहते थे और संदेशवाहक बहुत खतरे में थे। फिर भी यरीहो की एक स्त्री राहब ने अपने प्राण दाव पर लगाकर उनको बचाया। उसकी कृपा के बदले उस नगर पर अधिकार करने के समय उन्होंने उसे संरक्षण का आश्वासन दिया। गुप्तचर इस समाचार के साथ वापस सुरक्षित पहुंचे। निस्संदेह यहोवा ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। यरीहो में उनसे कहा गया था, हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का विनाश कर डाला है। ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। कूच करने की तैयारी के आदेश जारी किए गए। लोगों को 3 दिनों के खाने के लिए खाद्य सामग्री तैयारी करनी थी और सेना को युद्ध के लिए तैयार होना था। सभी अपने अगुआ की योजनाओं से प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गए और उन्होंने अपने समर्थन और विश्वास का आश्वासन दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के साथ रहता था वैसे ही तेरे साथ भी रहे। अपनी छावनी को शित्तीम के बबूल की वृक्ष वाटिकाओं में छोड़कर सेना यर्दन की सीमा पर उतरी, लेकिन सब जानते थे कि बिना ईश्वरीय सहायता के वे रास्ता निकालने की आशा भी नहीं कर सकते थे। वर्ष के इस समय पर बसंत ऋतु में पहाड़ों से पिघलती बर्फ यर्दन का स्तर इतना बढ़ा देती थी कि पानी किनारों से ऊपर बहने लगता था और सामान्य पार होने वाले स्थानों से पार होना असंभव कर देता था। परमेश्वर की इच्छा थी कि यर्दन पर से इसराइल के पारगमन चमत्कारी ढंग से हो। यहोशू ने ईश्वरीय निर्देश द्वारा लोगों को स्वयं को पवित्र करने को कहा। उन्हें अपने पापों को अलग करके स्वयं को बाहरी अशुद्धता से भी मुक्त करना था, क्योंकि उसने कहा, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करेगा। वाचा के संदूक को सेना के आगे आगे चलकर मार्गदर्शन करना था। जब वे यहोवा की उपस्थिति के प्रतीक को छावनी के मध्य से उसके स्थान से हटाकर याजकों द्वारा उठाया जाकर नदी की तरफ बढ़ता देखे, तो उन्हें भी अपने स्थान से हटना था और उसके पीछे पीछे जाना था। पारगमन की परिस्थितियों की सूक्ष्मता से भविष्यवाणी की गई थी और यहोशू ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बयों, परिज्जयों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है। निर्धारित समय पर याजकों के कांधों पर सवार वाचा के संदूक के नेतृत्व में सेना ने अपने आगे की गतिविधि प्रारंभ की। लोगों को पीछे हटने का निर्देश दिया गया ताकि संदूक के आसपास लगभग आधे मील का खाली स्थान हो। सभी गहरी उत्सुकता से याजकों को यर्दन के किनारे की तरफ बढ़ते हुए देखते रहे। उन्होंने याजकों को उमड़ती हुई नदी की ओर वाचा का संदूक लिए नियमित रूप से आगे बढ़ते देखा, जब तक कि वाहकों के पैर पानी में उतरे। उसी समय ज्वार पीछे हट गया, जबकि नीचे की जलधारा बहती रही और नदी तल दिखाई देने लगा।
पवित्र आदेश पर याजक नहर के बीच तक गए और वहां खड़े रहे, जबकि पूरी सेना उतरकर दूसरी ओर पार हो गई। इस प्रकार इसराइलियों के मनों में इस तथ्य को अंकित किया गया कि जिस शक्ति ने यर्दन के पानी को रोक रखा था, उसी शक्ति ने 40 वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों के लिए लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जब सभी लोग पार हो गए, वाचा के संदूक को पश्चिमी छोर पर लाया गया। जैसे ही वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, याजकों के पांवों के तले उठकर स्थल पर पड़े थमा हुआ जल छूटकर नदी की प्राकृतिक धारा में एक अबाध्य बाढ़ के रूप में पहले जैसे बहने लगा। आगामी पीढ़ियों को इस आश्चर्यकर्म के साक्ष्य से वंचित नहीं रहना था। जब संदूक उठाए याजक यरदन के बीच में ही थे, प्रत्येक घराने से एक एक अर्थात कुल 12 पुरुष, जिन्हें पहले से ही चुना लिया गया था, नदी तल से जहां याजक खड़े रहे थे, एक एक पत्थर उठाकर पश्चिमी छोर पर ले गए। नदी के पार पहले पड़ाव के स्थान पर इन पत्थरों को स्मारक के रूप में व्यवस्थित किया गया। लोगों को आदेश दिया गया कि परमेश्वर द्वारा छुटकारे की कहानी उनके बच्चों को और बच्चों के बच्चों को दोहराई जाए, जैसे कि यहोशू ने कहा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। इस आश्चर्य कर्म का प्रभाव इब्रियों व उनके शत्रुओं पर अत्यंत महत्वपूर्ण था। वो इसराइल के लिए परमेश्वर की स्थायी उपस्थिति और सुरक्षा का आश्वासन था, एक प्रमाण कि वो यहोशू के माध्यम से उनके लिए काम करेगा, जैसा कि उसने मूसा के माध्यम से किया था। देश पर चढ़ाई करने के प्रारंभ में उनके हृदयों को मजबूत करने के लिए ऐसे आश्वासन की आवश्यकता थी, जिस महान कार्य ने 40 वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों के विश्वास को झंझोर दिया था। पारगमन से पहले परमेश्वर ने यहोशू को घोषणा की थी, आज के दिन में मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहता था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी हूं। और परिणाम ने प्रतिज्ञा को परिपूर्ण किया। उस दिन यहोवा ने सब इसराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। इसराइल के पक्ष में ईश्वरीय शक्ति का अभ्यास पड़ोसी देशों के उनके प्रतिभा में वृद्धि करने के लिए था, ताकि उनकी संपूर्ण और आसान विजय के लिए मार्ग तैयार हो सके। जब कनानियों और एमोरियों के राजाओं के पास ये सूचना पहुंची कि परमेश्वर ने इसराइलियों के सम्मुख यरदन के पानी को थाम लिया था, तो उनके हृदय भय के कारण पिघल गए। इब्री मिद्यान के 5 राजाओं को, शक्तिशाली सिहोन, एमोरियों के राजा, बाशान के ओक का वध कर चुके थे, और अब तीव्र जलप्रवाह वाली यरदन के पारगमन ने पड़ोसी देशों को भय से भर दिया। कनानियों, समस्त इसराइल और स्वयं यहोशू को ठोस प्रमाण दिया गया था कि पृथ्वी और आकाश का राजा, जीवित परमेश्वर, अपने लोगों के बीच में था, और वो कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा और न ही उन्हें छोड़ेगा। यरदन से कुछ ही दूरी पर इब्रियों ने कनान में पहला पड़ाव डाला। यहां यहोशू ने इसराइलियों का खतना किया, और इसराइलियों ने गिलगल में पड़ाव डाला और फसह का पर्व मनाया। कादेश के विद्रोह पश्चात खतना की विधि का निलंबन इसराइल के लिए स्थायी साक्ष्य था कि परमेश्वर की उनके साथ वाचा, जिसका प्रतीक खतना था, टूट गई थी। और मिस्र से छुटकारे के स्मारक फसह के पर्व की समाप्ति इसराइलियों की दासत्व के देश में लौट जाने की अभिलाषा पर परमेश्वर की अप्रसन्नता का प्रमाण था। अब उपेक्षा के वर्ष समाप्त हो गए थे। एक बार फिर परमेश्वर ने इसराइल को उसके लोगों के रूप में स्वीकार किया और वाचा का चिन्ह पुनः स्थापित किया गया। खतना की विधि उन सब पर अपनाई गई जिनका जन्म बीहड़ में हुआ था, और यहोवा ने यहोशू को घोषणा की, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। और इसके सांकेतिक प्रसंग में उनके पड़ाव के इस स्थान का नाम गिलगल रखा गया, जिसका अर्थ है दूर कर देना। अधर्मी जातियों ने यहोवा और उसके लोगों की नामधराई की थी, क्योंकि इब्री कनान पर अधिकार पाने में असमर्थ रहे थे, जैसे कि मिस्र छोड़ने के पश्चात उनकी इच्छा थी। उनके शत्रुओं की विजय हुई थी, क्योंकि इसराइली इतने लंबे समय तक बीहड़ में भटके थे, और उन्होंने उपहास करते हुए घोषणा की थी कि इब्रियों का परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाने में असमर्थ था। अपने लोगों के सम्मुख यरदन से मार्ग निकालने में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था, और अब उनके शत्रु उनकी नामधराई नहीं कर सकते थे। महीने के 14वें दिन संध्या को यरीहो की तराई में फसह का पर्व मनाया गया, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना नहीं मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। बीहर में भटकने के लंबे वर्ष व्यतीत हुए थे। आखिरकार इसराइलियों के पैर प्रतिज्ञा के देश पर चल रहे थे।